समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन।
वेल, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा एंड टुडे देयर इज अ लॉट दैट वी आर गोइंग टू अनपैक। वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस न्यूज, ट्रिब्यूट्स एंड अ लॉट मोर। सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेडलाइंस, शैल वी?
जी, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की।
जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन थ्री फेजेस ऑन 18 सितंबर, 25 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, वाइल हरियाणा विल गो टू पोल्स इन अ सिंगल फेज ऑन 1 अक्टूबर।
इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-8 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
Doctor strike continues over alleged rape and murder of a woman doctor in Kolkata. Medical services hit in many cities across the country.
भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की।
And Thailand's parliament elects Pettungtan Shinawatra as country's new prime minister. And now let's take a look at the developments which are taking place at national and global level in this particular segment, Dateline India. Today we will be discussing about how we can protect doctors from violence in workplaces. The horrific rape and murder of a 31-year-old doctor in Kolkata sparked nationwide outrage and led to protests within and beyond the medical community, demanding a transparent investigation and improved safety norms for doctors on call at hospitals, which is the need of the hour. The rape has revived memories of a similar case in New Delhi, Akarshita, which happened in the year 2012, when a gang of men raped and severely injured a 23-year-old student in a moving bus, which eventually led to her death. Holding candles and posters that said, "Reclaim the night," thousands of women held marches across the country and abroad overnight, and Prime Minister Narendra Modi called for strict punishment for crimes against women in his Independence Day address from the rampart of the Red Fort yesterday. He said, and I'm quoting, "As a society, we have to think about the atrocities being committed against our mothers, daughters and sisters. There is outrage against this in the country. I can feel this outrage," Prime Minister Modi said this. In protest, Indian Medical Association has also announced a 24-hour nationwide withdrawal of non-emergency services from 6 a.m. tomorrow.
धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज भय के साए में हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। एक डॉक्टर और मरीज का संबंध विश्वास का संबंध होता है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं समाज को झकझोर कर रख देने वाली हैं। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा एक चिंताजनक घटना है। ये आंकड़े बढ़ती आक्रामकता के एक पैटर्न को प्रकट करते हैं। विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के एक अध्ययन के अनुसार 75% से अधिक डॉक्टरों को अपने जीवन काल में शारीरिक या मौखिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। हमारे डॉक्टरों को लगभग हर दिन मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों में कई हिंसक घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें डॉक्टरों से लेकर नर्सों और पैरामेडिक्स तक के स्वास्थ्य पेशेवरों को निशाना बनाया गया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में एक मरीज के रिश्तेदार ने एक नर्स पर लोहे की रॉड से हमला किया, जबकि अगरतला में एक जूनियर डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदारों के उत्तेजित समूह से धमकियों और शारीरिक क्षति का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं इस कठोर वास्तविकता को उजागर करती हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में हिंसा का माहौल बढ़ रहा है और युवा और महिला ये महिला पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आज शगुन हमें इस पर सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। जान बचाने वाले पर ही आक्रामक होना कहां का बड़प्पन है। और शगुन हम जानते हैं कि जो मरीज और एक डॉक्टर का रिश्ता होता है कि जब हम कठिन से कठिन परिस्थिति में होते हैं, हमारी जान जाने वाली होती है, हमारी किसी रिश्तेदार या हम बीमार होते हैं, तो एक डॉक्टर ही होता है जिसकी दवाओं से, जिसकी मेहनत से हम ठीक हो पाते हैं, जो रात दिन एक करके इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करके हमारी जान बचाते हैं। और अगर हम उनके लिए ही खतरा बन जाए तो ये कितनी जो है बड़ी विभीषिका वाली बात है कि हम कहां जा रहे हैं, कि हम जो हमारे रक्षक हैं हम उन्हीं के लिए जो है उन्हीं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है। और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप डॉक्टरों का जो है आभार व्यक्त करें कि वो दिन प्रतिदिन जो है समय और घंटा
नहीं मिलती फॉर द वर्क दैट दे डू फॉर अस, दे पुट इन सो मेनी आवर्स एंड The conditions have to be improved. I mean, a serious thought has to be given to this particular situation.
हाँ, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की ही सुरक्षा की बात नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा की भी बात है। और हमें महिला सुरक्षा के प्रति भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सुविधाएं दे रही हैं, चाहे वो मीडिया से लेकर के मेडिकल क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है भागीदार हैं। तो हमें उनकी भी सुरक्षा साथ ही साथ सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
A serious thought has to be given to this particular situation and all of this that keeps on happening, the pattern that we have been observing. Women empowerment is basically the need of the hour, and for that purpose, this particular points that you are, you know, sharing with our listeners, they have to be focused upon.
जी, हमें हमारे समाज को थोड़ा सा तो और संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें और साथ ही साथ हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे वो सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन हमें अपनी और अपने चारों ओर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और इसके भागीदार हम सब हो सकते हैं। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी महिला जो आप सहभागी है उसको अच्छा फील करा सकते हैं, उसकी थोड़ा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में। आप जो भी कर सकते हैं, हाँ, मैं अपने सभी भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि हम उनकी सुरक्षा जो है छोटे छोटे चीजों से सुनिश्चित कर सकते हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वो अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ में हैं तो आप उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं।
एट वर्क प्लेसेज स्पेशली, वेयर एवर यू आर, वी कैन फोकस अपॉन द सिक्योरिटी।
हाँ, आप उनको थोड़ा अच्छा महसूस करा सकते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके।
While this tragedy cast a stark light on the ongoing vulnerabilities, which we are also focusing upon within hospital systems in India, it also brings into focus the pervasive issue of violence against doctors and healthcare workers in the country. Over the years, the healthcare community has consistently called for laws robust enough to deter such kind of violence. Doctors, obviously, they are demanding a central law to be put in place for the protection of medical workers. As per constitutional provisions, while focusing on that, health and law and order are state subjects. State governments are expected to set up mechanisms to prevent violence against doctors, including imposition of penalties or setting up helplines. The helplines, you know, the numbers which are available so that they can call, and on call help can be provided to them to extend immediate help also to such doctors who are victims of violence in any of the cases.
और शगुन, हम अधिकतर देखते हैं कि अस्पताल में या कहीं भी जो ऐसे पेशेंट होते हैं, मतलब जो ऐसे हैं जिनकी जान को बहुत खतरा है या अपनी जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, ऐसे केसेस में या बहुत ढेर सारे बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं जिसमें मरीज की जान जाने का जोखिम होता है और पहले ही बता दिया जाता है कि आपके परिवार को पहले ही बता दिया जा सकता है कि मतलब उसमें कि आपकी जान जा सकती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे लोग आक्रामक हो जाते हैं डॉक्टरों पर, कि मतलब उनको ही दोषारोपण करने लगते हैं, जबकि उनके हाथ में जितना होता है वो तो उतना करते ही हैं। तो हमें जो है ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स पर दोषारोपण करने के बजाय हमें उस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए और एक तरीके से साइंटिफिकली उस चीज को ऑथेंटिसिटी के साथ और प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि उस केस में हम क्या कर सकते हैं.
वेल ऑल्सो लुकिंग बैक इन टू द कोविड टाइम्स राइट ड्यूरिंग दोज टाइम्स वेन वी वर वर्किंग फ्रॉम होम आई मीन मेनी पीपल दे वर वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो डॉक्टर्स वर पुटिंग इन सो मेनी आवर्स इन इमरजेंसी वार्ड्स एंड एट वेरियस प्लेसेस यू नो टू हेल्प अस
दे वर आर हीरोज
दे आर आर हीरोज एंड दे विल ऑलवेज रिमेन आर हीरोज सो अ सीरियस थॉट एज we are talking about it has to be you know we have to emphasize on this particular fact that security issues which are rising they should be
addressed
and they should be improved
right. इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा एक अपराध है और भारतीय न्याय संहिता के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उचित रूप से इसे निपटा जाना चाहिए ताकि डॉक्टर हिंसा उनके साथ की हिंसा के डर के बिना अपने जो प्रोफेशन है उसको उसमें वो काम कर सके क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हालात कैसे बिगड़ रहे हैं कि बहुत ही सारी ऐसी जो है मदर्स हैं जो अपनी जो है बच्चों को नहीं भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है बिकॉज
they are scared about what can happen, what can be the consequences
of this. और कम से कम 19 राज्यों ने डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाए हैं जो कई राज्यों में एक गैर जमानती अपराध है लेकिन वर्तमान में मौजूद कानून काम नहीं कर रहे हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों से स्पष्ट ही हैं. और महाराष्ट्र में 10 साल से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून है लेकिन इसके खराब कार्यान्वयन के कारण उस कानून के तहत कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है. ये भी बहुत चिंता का विषय है कि कानून होते हुए भी अभी तक उसको दोषी नहीं मतलब माना जा रहा है जो दोषी है और कानून को कोई गंभीरता से नहीं लेता जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है. तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर डॉक्टरों पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा संगीन तरीके से
दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर स्टॉप्ड दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी यू नो कंप्लीटली प्रिवेंटेड. The issue is complex both from legal and implementation points of view, Akarshita. But treating issues as a law and order situation is just one way. The real solution may lie in enhancing the health infrastructure overall in India. Also counseling patients about possible adverse impacts or results of treatment, like we are talking about it, and giving security in medical institutions and effective execution of the legal provisions, like you were saying. Doctors in India are highly rated in the world and work for long hours under stressful conditions, grappling with a huge load of patients. It is the duty of state to ensure the safety and security of doctors and assure that the healthcare needs of society are met.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो आइए अब जानते हैं जालंधर से देश के अन्य भागों की भांति पंजाब में भी राष्ट्र का 18वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी कर रहे सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर ने भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया. बल्कि महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अमृतसर के समीप खासा स्थित सीमा सुरक्षा बल परिसर में क्वार्टर गार्ड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. एक रिपोर्ट.
78वें स्वतंत्रता दिवस पर सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा पर अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया. बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल परिसर खासा अमृतसर के परिसर में क्वार्टर गार्ड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके बलिदान की बदौलत स्वतंत्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ. उन्होंने बल के सभी कर्मियों व उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनसे देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया. इस ऐतिहासिक दिन का मुख्य समारोह अटारी स्थित विश्व प्रसिद्ध जेसीपी में शाम के समय आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी रहे जबकि उनके साथ पंजाब फ्रंटियर के महानिरीक्षक डॉक्टर अतुल फुलझेले और बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस समारोह में स्कूल व कॉलेज के छात्रों और अन्य संस्थानों के विभिन्न समूहों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक और देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुत प्रस्तुतियां दी गयी, जबकि बल की महिला बोल्स टीम और प्रहरी ब्रास बैंड ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उपस्थित सभी दर्शक देशभक्ति के उत्साह में डूब गए। बाद में हुई भव्य रिट्रीट सेरेमनी में बल के बहादुर जवानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने दर्शकों को राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना से सराबोर कर दिया। इससे पहले पंजाब फ्रंटियर के महानिरीक्षक डॉक्टर अतुल फुलझेले ने महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को पंजाब फ्रंटियर की ऑपरेशनल तैयारियों और सीमा को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए बल द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों से अवगत करवाया। महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने पंजाब फ्रंटियर की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। सीमा पार से उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर अपनाए जा रहे सामरिक उपायों की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अग्रिम सीमा क्षेत्रों का भी दौरा किया और सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत की। उन्होंने बाधाओं और कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा पार अपराधों से निपटने में कर्तव्य निष्ठ बल के अधिकारियों और जवानों के प्रयासों की सराहना की। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
Now let's turn our attention to the Indian Space Research Organization. The Indian Space Research Organization has successfully launched the SSLV Earth Observation Satellite with 3 missions today. The organization is gearing up to launch the unmanned Gaganyaan mission during December this year. In 2 years from now, there will be a launch pad for smaller satellites at Kulasekarapattinam in Thoothukudi in Tamil Nadu. We have a report on this.
India has been striving forward in different facets of space technology, including technological and knowledge transfers to benefit the space industry. The major decision has been taken to share technological nuances with the industry so that Indian space initiatives can have a permanent place in global space market. Indian space research has been pioneering in highest advancement with reasonable prices to attract investments in space sector. Scientists at ISRO have been working hard to achieve the goal of a safe human mission to space. Mr. Somnath, the chairman of Indian Space Research Organization, told the media that the latest initiative is to test the emission of ultraviolet gamma rays radiation from solar particles through the unmanned mission. He said that the atmosphere prevailing in the Earth protects humans from all type of radiation, whereas when they are in space, they are exposed to multiple radiation factors. And he assured that the unmanned mission will be research-oriented to find out ways to protect astronauts from radiation during spacewalks. Today's mission of SSLV D3 was successful with the deployment of solar panels. The lifetime of the satellite is 1 year. India's initiative in this mission is clear and precise. The aim is to send mini, micro and nano satellites produced by industries. The government achieves the objective of public-private partnership in space industry. The 3 payloads for today is significant for the country. It has been placed at 475 km into circular orbit. The mission will provide vital data relating to environmental disaster, forest fires, effects of climate change in mountainous regions in the country, which will prevent human loss. This will also ensure any power plant disaster, ocean level changes and changes in river overflow. The data will have infrared images unmindful of day or night. The launch pad at Kulasekarapattinam, Thoothukudi will be used for smaller satellite launch vehicles as it is in a geographically important location quite near to the neighboring country. Joy, Akashwani reporting for Parikrama from Chennai.
Shagun, wo kaun sa festive hai jiske liye hum sab excited hain?
This particular festival is Raksha Bandhan.
Ji haan. To abhi hum aapke liye lekar aa rahe hain ek khaas news Dehradun se. Phir unki rakhiyon ke bare mein suna hoga Shagun.
Yes,
I heard. Ye Uttarakhand ki rakhiyan hain. To bhai behan ka tyohar Raksha Bandhan aagami 19 agast ko manaya ja raha hai. त्यौहार के मद्देनजर देश भर के बाजार राखियों से सज गए हैं। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के बाजारों में पिरुल की राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग हस्तनिर्मित राखियां खरीदकर स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड से हमारी संवाददाता साक्षी सिंह की खास रिपोर्ट।
रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक के बाजारों में रौनक है। राजधानी देहरादून में रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार लोगों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। भाई बहनों के इस पर्व के लिए बहनें अभी से ही अपने बाहर रहने वाले भाइयों के लिए राखी खरीद कर भेज रही हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों में खासा उत्साह है। राखियां भेजने के लिए डाकखानों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राज्य के पर्वतीय जिलों में महिलाएं पेरुल की राखियां तैयार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस बार के रक्षाबंधन की डोर भाई बहनों के स्नेह के साथ ही पर्यावरण के प्रति प्रेम का भी प्रदर्शन करेगी। चीड़ के पत्ते की पत्तियां, पेरुल से बनाई जा रही राखियां पर्यावरण के प्रति संजीदगी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वरोजगार की प्रवृत्ति भी बढ़ाएगी। इन दोनों राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं पेरुल से खास तरह की सुंदर राखी तैयार कर रही हैं। स्थानीय बाजार के साथ ही अन्य राज्यों में भी पेरुल की राखियां बेचने के लिए सरकारी स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। राखियां तैयार करने वाली महिलाएं बताती हैं उनकी राखियों की मांग दिल्ली के बाजारों में भी है। राखी तैयार कर रही मंजुला बताती हैं उन्हें पेरुल की राखियों से अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने सभी भाई बहनों से इस वर्ष हस्तनिर्मित राखियों का उपयोग करने का आह्वान किया है।
नमस्कार, मैं मंजू आरसा सिरू उमन। इस बार हम राखी पर इको फ्रेंडली राखियां बना रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें उपहार चीड़ की पत्तियां मिली हैं उसके द्वारा हम ये राखियां बना रहे हैं। ये इको फ्रेंडली है ही और उसके साथ ही महिलाओं को रोजगार का एक जरिया भी बनी है, जिससे बहुत अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। आइए इस रक्षाबंधन इको फ्रेंडली राखियों को खरीद करें और अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन हेतु एक छोटा सा प्रयास करें।
गौरतलब है कि पेरुल के कारण जंगलों में आग तेजी से फैलती है और जंगलों में आग लगने का ये प्रमुख कारण है। सरकार के प्रयास से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं पेरुल से राखियां तैयार कर पर्यावरण संरक्षण करने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 16th August, year 1909, was born Gothu Lachana in Srikakulam, Andhra Pradesh. He was a champion of kisans, backward classes, weaker sections and one of the most prominent leaders of his time. He was arrested at a very young age of 21 when he participated in the salt satyagraha at Palasa. Lachana also participated in the Quit India movement. He was conferred the title of Sardar for his fearless fight against the British Raj.
Having been inspired by Gandhi's fast unto death on the issue of untouchability, Lachana organized Harijan Seva Sangam at Barua in 1932. He started a night school in the Harijan Cheri and agitated against untouchability. He organized estate-wise Zamindari Raitu associations, no-tax campaigns, fought for the abolition of Zamindari system as farmers were unable to pay the heavy land revenue that was levied upon them. In 1940, he organized All India Kisan Sabha at Palasa.
Another interesting fact about this day is that Puducherry celebrates its independence on the 16th of August. Puducherry, then Pondicherry, was a French colony and their parliament ratified the Treaty of Secession on August 16, 1962, formally merging Puducherry with the Union of India.
Mark Twain has aptly summed up India as the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल शगुन से।
लीला कर्षिता, द काउंटडाउन इज ऑन एंड ऑल आईज आर स्टिल फोकस्ड ऑन पेरिस। द लार्जेस्ट एवर कंटिंजेंट ऑफ 84 प्लेयर्स विल टेक पार्ट इन द अपकमिंग पेरिस पैरालंपिक गेम्स दिस ईयर। द पैरालंपिक गेम्स विल टेक प्लेस फ्रॉम द 28th ऑफ दिस मंथ 28th ऑगस्ट टू द 8th ऑफ सेप्टेम्बर 2024। 47 एथलीट्स आर टेकिंग पार्ट इन द गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एड्रेसिंग द सेंड ऑफ सेरेमनी ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स, यूनियन Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya said that there are 50 players in this team who benefited from the Target Olympic Podium Scheme, which is TOPS. He said the government has provided every facility such as training and coaching to the players under this scheme. Mr. Mandaviya said that many of the players have emerged from the Khelo India Games.
आप में से कई प्लेयर खेलो इंडिया से निकले हैं। तकरीबन 50 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप स्कीम के लाभार्थी रहे हैं। आपको आपके जीवन में कोई इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो या बेस्ट कोच रखना हो या जो भी संसाधन की आपको आवश्यकता रही, और टोप्स के द्वारा आपको उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है।
Our correspondent talked to some of the players who are taking part in the Paris Paralympic Games. They expressed confidence that they will perform well and win a medal for the country.
मेरा नाम अर्शद है, मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग करता हूँ आदित्य मेहता फाउंडेशन में। मेरा पैरा साइकिलिंग है MC2 कैटेगरी, पहली बार हम लोग पेरिस में ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप में मेरे 12 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। हम लोग बहुत तैयारी करें मेडल लेके आने के लिए, हम कोशिश करेंगे मेडल लेके आए।
मेरा नाम अशोक मलिक है और मेरा गेम है पैरा पावर लिफ्टिंग, और मैंने पैरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और पैरा एशियन गेम्स चाइना में हो रहे थे, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और थाईलैंड में मैंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था, और जिसकी वजह से मेरा अभी सिलेक्शन हो गया था पेरिस से पैरालंपिक्स। टॉप्स गेम से मैं 3-4 महीने से हूँ, और जो कि मेरे को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल रहा है, टाइम टू टाइम मेरे को जो चीजें की रिक्वायरमेंट डाली थी मैंने वो टाइम टू टाइम मेरे को मिल रही है।
In the last Paralympic Games held in Tokyo, Indian players performed well, winning 19 medals. In those games, 54 players participated from the Indian side. Now let's focus on what's happening in the business world. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended the week's last trading session with gains of over 1.5% each today. The BSE Sensex soared 1,330 points or 1.68% to close at 80,437. The NSE Nifty gained 397 points or 1.65% to close at 24,541. और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं। आज पुण्यतिथि है एक कवि और भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1998 और 1999 में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक से जोड़ा देश को, और उन्होंने परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताया और 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। उन्हें देश के प्रति उनके योगदान के लिए सरकार ने पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया।
कलम मिलाकर चलना होगा, बाधा है आती है आए, घृण तरह की घोर घटा है, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वाला है, निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृण तरह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वाला है, निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना।
Today we are also remembering Elvis Presley, singer and actor. He is known as the king of rock and roll. He is regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. And you are listening to this song, Can't Help Falling in Love, by him.
Only fools rush in, but I can't.
आज रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि है। वे भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे और साधन के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं।
टुडे इट्स ऑल्सो इंडियन क्लासिकली ट्रेन्ड प्लेबैक सिंगर हेमलता'स बर्थडे। शी इज बेस्ट नोन फॉर अ सॉन्ग इन द लेट 1970s, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग।
देखा जो
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती है। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद अपनी अनुभूतियों को कहानियों में भी व्यक्त किया। और आज हिंदी फिल्मों के अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है, आइए सुनते हैं ये गीत।
बिल्कुल कवारा मैं हूँ आशिक, आशिक कवारा मैं हूँ आशिक, आशिक कवारा।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन, नमस्कार।